ओम शांति। आज मैं आपके समक्ष धर्म और कर्म के विषय पर कुछ विचार प्रस्तुत करूंगी। मानव जीवन में मुख्य दो बातें हैं, एक है धर्म और दूसरा है कर्म। दोनों का ही हमारे जीवन में महत्व है। धर्म का अर्थ है धारण करना। जीवन में जो भी श्रेष्ठ बातें हैं, सत्य विचार है, आचरण है, उन्हें अपने जीवन में अपनाना, उसको धर्म कहा जाता है। और कर्म माना चैतन्य शक्ति आत्मा की इंद्रियों के द्वारा अभिव्यक्ति की जो भी क्रिया होती है उसको हम कर्म कहेंगे। दोनों में से एक भी बात को हम छोड़ नहीं सकते हैं। कई सोचते हैं कि मैं तो कर्म सन्यासी हूं, समाज की परिवार की जो जिम्मेवारियां हैं उसको छोड़कर मैं तो दिन रात धर्म करता हूं, मैं कर्म सन्यासी हूं। लेकिन विवेक से सोचने पर ये बात समझ में आएगी कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण कर्म सन्यासी नहीं बन सकता है। वो अपने गृहस्थ जीवन की, समाज के प्रति जो उनकी फर्ज है, उनका जो कर्तव्य है, उनकी जो जिम्मेवारी है, उसको वो छोड़कर जंगल में चला जाए। लेकिन जंगल में जाना, वहां जाकर भी जीवन जीना, साधना करना, श्वास लेना, आंखों से देखना, ये भी तो कर्म करना है। इसलिए संपूर्ण कर्म सन्यासी कोई भी नहीं बन सकता है। चैतन्य शक्ति आत्मा इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर आने के बाद और शरीर रूपी कर्म करने के साधन को धारण करने के बाद वो एक क्षण भी कर्म किए बिगर रह नहीं सकती है। इसी प्रकार हम धर्म को भी नहीं छोड़ सकते हैं। धर्म के श्रेष्ठ धारणाओं के बिगर हम अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ नहीं बना सकते। जैसे कई कहते हैं कि हमारे लिए तो वर्क ही वर्शिप है, बस अपनी फर्ज अदाई करो, यही धर्म है। बेशक फर्ज अदाई करना, कर्तव्य पालन करना अपने आप में एक गुण है, लेकिन धर्म हमें ऐसे अनेक गुणों का ज्ञान देता है। इसलिए धर्म की धारणाएं हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाती हैं। आज की परिस्थिति को हम देखें तो हमारे जीवन में धर्म और कर्म दोनों अलग हो गए हैं। धर्म करना माना हम अपने नियम अनुसार आधा घंटा, घंटा, दो घंटा धर्म के नाम पर क्रियाकांड, पूजा पाठ, कथा श्रवण, शास्त्र पठन, देव दर्शन वगैरह कर लेते हैं और हमारी भावना संतुष्ट हो जाती है कि हमने धर्म किया। इस प्रकार धर्म मंदिर में होता है और कर्म घर में रह जाते हैं। धर्म का कर्म के ऊपर आज कोई प्रभाव नहीं रहा है। दो घंटा धर्म करने के बाद दिन भर के बाकी के 22 घंटे हमें ये ध्यान भी नहीं रहता है कि धर्म हमें क्या सिखाता है। हम कह सकते हैं कि 2 घंटे का धर्म करके बाकी के 22 घंटे अधर्म करने की परमिट हम मंदिर से प्राप्त कर लेते हैं। कई बार धर्म की क्रियाओं को हम जड़ता से अपना लेते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफिसर का उदाहरण मैं आपको दूं, वो पूजा पाठ करते थे 2-3 घंटा प्रतिदिन और उस समय वो मौन में रहते थे। एक समय अचानक उसी समय एक चोर को पकड़ करके उनके कर्मचारी ले आए और उसको सजा देना जरूरी था, इसलिए उन्होंने पूछा कि इनको क्या सजा दी जाए। अब ऑफिसर तो पूजा के समय मौन रखते थे, तो उन्होंने क्या किया कि शिवलिंग जिसकी वो पूजा कर रहे थे उसको जनेऊ से बांधा और अचमनी से उसको फटकारा। माना तुम भी ऐसे चोर को बांधो और फटकार। अब इस प्रकार के धर्म की क्रिया का क्या अर्थ है? कईयों ने आज धर्म को जीवन निर्वाह का साधन बना दिया है। बस क्रियाकांड कराना, पूजा पाठ कराना, होम हवन कराना, वही उनके जीवन निर्वाह का आधार बन गया है। माना धर्म उनके लिए कमाई का एक धंधा बन गया है। ऐसे वातावरण में आज आवश्यकता है हमारे जीवन के अंदर कर्म में धर्म के समन्वय की, अर्थात योग और कर्म के समन्वय की। कहा भी जाता है कि योगः कर्मसु कौशलम्। योग युक्त होकर जो कर्म हम करते हैं वो कुशल होते हैं। तो ऐसे कर्म में धर्म का समन्वय करने के लिए हम उसके यादगार प्रतीक को देखेंगे। श्री विष्णु जी का जो चित्र है वो कर्म और धर्म के समन्वय का प्रतीक है। प्रवृत्ति मार्ग को पवित्र बनाने का ये प्रतीक है। हम रोज बरोज के जीवन में अपने गृहस्थी के जो कर्म करते हैं उनको अगर हम पवित्र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ धारणाएं करनी होगी, तभी हम अपने कर्म में धर्म को ला सकेंगे, तभी हम कर्म श्रेष्ठ और धर्म श्रेष्ठ बन सकेंगे। श्री विष्णु जी के चित्र में 4 हाथों में जो 4 अलंकार दिखाए हैं वो आध्यात्मिक रहस्यों के प्रतीक है। अगर इन आध्यात्मिक रहस्यों को हम जीवन में धारण करें तो हम अपने कर्म को पवित्र बना सकते हैं, धर्म की श्रेष्ठ धारणाओं को आचरण में ला सकते हैं। तो पहला जो उसका अलंकार है सुदर्शन चक्र। गाया जाता है कि सुदर्शन चक्र से असुरों की गले काटे। वास्तव में देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, वो कोई हिंसा नहीं करते। आज कलयुग के अंत में भी गांधी जी ने कहा है कि पापी को नहीं मारना है, पाप को मारना है। तो ये असुरों को मारने की बात नहीं है, लेकिन आसुरी संस्कारों को परिवर्तन करने की बात है। हम समझते हैं कि असुर कोई अलग योनि के प्राणी हैं, देवताएं कोई आकाश लोक में रहने वाले हैं और हम अलग ही मृत्यु लोक के मानवी हैं। परंतु वास्तव में हम मनुष्यात्माएं ही जब पवित्र और दिव्य गुणों से संपन्न होती हैं तो देवता कही जाती हैं। और हम ही जब अपनी पवित्रता और दैवी गुणों को गंवाते हैं और विकारों के वश आसुरी संस्कार हमारे में आते हैं तो हम असुर कहे जाते हैं। तो असुर कोई अलग योनि के प्राणी नहीं है। आसुरी संस्कार वाली आत्माओं को ही असुर कहा जाता है। तो सत्यता यह है कि स्व दर्शन से आसुरी संस्कारों का परिवर्तन, क्योंकि हमारे संस्कार बुरे तब बनते हैं जब हम विषयी चिंतन या व्यर्थ चिंतन या पर चिंतन में अपना मन लगाते हैं। हम दूसरों के लिए सोचते हैं, कौन कहां गया, किससे मिला, क्या बात की, लेकिन हम स्वयं के लिए चिंतन कभी नहीं करते हैं कि हम कौन हैं, क्यों इस दुनिया में आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। तो अब हमें स्वचिंतन आत्मचिंतन करना है। जब हम अपने ही आत्मस्वरूप का चिंतन करते हैं, स्व का ही निरीक्षण करते हैं, स्व सुधार के लिए सोचते हैं, तो उस आत्मचिंतन से, प्रभु चिंतन से, सत्य ज्ञान के चिंतन से हम अपने संस्कारों में परिवर्तन ला सकते हैं। और ऐसा चिंतन करते रहने से धीरे धीरे ये आसुरी संस्कार निर्मूल हो जाते हैं। तो ये है स्व चिंतन, स्वदर्शन, आत्मनिरीक्षण से संस्कारों का परिवर्तन। और एक धारणा जो हमें जीवन में करनी है वो है विष्णु जी का दूसरा अलंकार शंख जो दिखाया है वो सत्य ज्ञान की ध्वनि का प्रतीक है। हमारा मुख भी एक शंख है और इस मुख रूपी शंख से हम ध्वनि करते रहते हैं, लेकिन हम इधर उधर की तेरी मेरी अज्ञानता की या मिथ्या ज्ञान की बातें करते रहे, इससे तो इस मुख रूपी शंख से सत्य ज्ञान की ध्वनि करे। जैसे परम पिता परमात्मा सत्य ज्ञान से अज्ञान निंद में सोई हुई हम आत्माओं को जगाते हैं, ऐसे हमारा कर्तव्य है कि हम मुख से सत्य ज्ञान की बातें करें और आत्माओं को जागृत करें। लेकिन इस ज्ञान ध्वनि का कार्य कौन कर सकता है, उसके लिए तीसरे अलंकार की धारणा चाहिए, और वो तीसरा अलंकार है कमल पुष्प। कमल पुष्प पवित्रता का सूचक है। जैसे कमल कीचड़ से उगता है लेकिन कीचड़ से अलिप्त रहता है, ऐसे ही हमें इस संसार में ही रहना है, इस समाज में ही रहना है, अपने गृहस्थ व्यवहार और जिम्मेवारियों को निभाना है, लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी हमें विकारों से अलिप्त रहना है, नकारात्मक प्रवृत्ति और वृत्तियों से अलिप्त रहना है। तो संसार में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता की धारणा का प्रतीक है कमल पुष्प। पवित्रता से ही हम अपने कर्मों को पूजनीय, उच्च, श्रेष्ठ बना सकते हैं। अब प्रवृत्ति में रहते हुए पवित्र वृत्ति बनाने के लिए हमारे में शक्ति चाहिए, और उसके लिए चौथा अलंकार है ज्ञान की गदा। सत्य ज्ञान एक शक्ति है। जब सत्य ज्ञान की समझ बुद्धि में आती है तो हम अपने आप में अयथार्थ, असत्य, असार क्या है वो महसूस कर सकते हैं और सत्य ज्ञान की शक्ति से उनको समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इन चारों ही अलंकारों के वास्तविक रहस्यों को धारण करने से हम सच्चे अर्थ में वैष्णव, पवित्र, शुद्ध बन सकते हैं, कर्मों की शुद्रता समाप्त कर धर्म की श्रेष्ठ धारणाओं को लाकर हम कर्म श्रेष्ठ बन सकते हैं। आज हमारा कर्म अलग हो गया है, धर्म अलग हो गया है, उसी के कारण गृहस्थ और आश्रम भी अलग हो गया है। हम कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज गृहस्थ अलग है, आश्रम अलग है। गृहस्थ माना हम समझते हैं कि जहां देह, देह के संबंध और दैहिक प्रवृत्तियों का स्थान, और आश्रम माना हम समझते हैं कि जहां भक्ति, भजन, कथा, कीर्तन होते हो। इसलिए आज दोनों अलग अलग है, लेकिन आश्रम जैसी पवित्रता, सात्विकता, शांति, श्रेष्ठ चिंतन अगर हम अपने गृहस्थ में भी धारण करें तो हम अपने गृहस्थ को भी पवित्र बना सकते हैं। तभी सच्चे अर्थ में हम अपने संबंधों को भी पवित्र बना सकते हैं। हम कहते तो हैं कि धर्म पति, धर्म पत्नी, परंतु आज पति और पत्नी के विषयी संबंध बाकी रह गए हैं, धर्म की श्रेष्ठ धारणाएं तो लुप्त हो गई हैं। तो अब ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के माध्यम से हम अपने स्मृति को, वृत्ति को, दृष्टि को पवित्र बना करके अपनी प्रवृत्ति को श्रेष्ठ बना सकते हैं, शुद्ध बना सकते हैं, और इस प्रकार हमारी प्रवृत्ति ही हमारी प्रगति का साधन बन सकती है। आज हम गृहस्थ को एक बोझ महसूस करते हैं, एक जंजाल है ऐसा कहते हैं, परंतु धर्म की श्रेष्ठ धारणाओं को हम आचरण में लाएंगे तो हमारा गृहस्थ व्यवहार, हमारा रोज बरोज का कर्म बोझ नहीं लेकिन सुख और आनंद का साधन बन जाएगा। इसलिए राजयोग का अभ्यास, जो कि हमारी मनोस्थिति को श्रेष्ठ बना देता है, हमारी बुद्धि को शुद्ध कर देता है, हमारे संस्कारों को दिव्य बना देता है, उसके अभ्यास से हम अपने आचरण को भी शुद्ध कर सकते हैं। और इस प्रकार की व्यवहार शुद्धि जब हमारी होती है तो हमें जीवन में ही मुक्ति का अनुभव होता है। जैसे राजा जनक के लिए गाया हुआ है कि उसे सेकेंड में जीवन मुक्ति मिली। जब एक सन्यासी ने इस बात को सुना तो उसे आश्चर्य लगा और उन्होंने राजा जनक से पूछा कि आपको गृहस्थ में रहते हुए, इतना राज कारोबार संभालते हुए कैसे मुक्ति मिली। तो राजा जनक ने कहा कि लीजिए, मैं आपको ये जलता हुआ दीपक दे रहा हूं, इस दीपक को लेकर आप मेरे पूरे राजमहल और कारोबार को देख के आइए। सन्यासी जी उस जगते हुए दीपक को लेकर उसका राजमहल, राज कारोबार, राज भंडार, राज दरबार देखने जाते हैं, लेकिन राजा जनक ने कहा था कि ये ध्यान रखना कि ये बूझ न जाए। तो सब कुछ देखते हुए भी सन्यासी जी का ध्यान इसी बात पर रहा कि कहीं ये दीपक बुझ न जाए। राजा जनक ने कहा कि सब कुछ कारोबार संभालते हुए मैं सदा ये ध्यान रखता हूँ कि ऐसा कोई कर्म ना हो जो मेरी जगी हुई आत्मज्योत बुझ जाए। हमें भी अपनी प्रवृत्ति संभालते हुए सदा ये ध्यान रखना है कि हम ऐसे कर्म करें जिससे हमारी आत्मा की ज्योत जगी हुई रहे। उस अटेंशन में रहकर कर्म करना, इसको ही कहा जाएगा धर्म और कर्म का समन्वय करना। ओम शांति।